तफसीर वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहू कैन सिद्दीकन नबिया। और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर, और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। आप देखिए कि पिछली आयतों में आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, और उसमें क्या था कि नसारा पर, ईसाइयों पर जो है वो हकीकत को वाजे करना था कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या थी, ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या थी। तो वो भी कौन थे? वो भी नबियों ही की नस्ल में से थे, और उनकी तालीम और दावत भी वही थी जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रही या दूसरे पैगम्बरों की रही। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि ईसाइयों के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, और कुरैश के हवाले से, अहले मक्का के हवाले से अब जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, जो कि और पैगम्बरों का जिक्र भी आप पढ़ेंगे, लेकिन खास तौर पे क्यों इनका जिक्र किया जा रहा है कि अहले मक्का तुम सोचो तो सही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जिनको तुम अपना पेशवा, लीडर और रहनुमा मानते हो, तो उनका किरदार क्या था और तुम्हारा किरदार क्या है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, और जिक्र कर किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो किताब से मुराद क्या है? कुरान मजीद। बाद मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें कुरान मजीद में, यानी कुरान मजीद है। और बाज मुफस्सरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो पिछली किताबें हैं, अल किताब से मुराद जो है क्या है कि कुतुबे साबिका। तो क्यों कहा गया कि जो है वो कुतुबे साबिका का जिक्र क्यों किया गया? इससे मुराद ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दावत रही, जो पिछली किताबों में थी, तौरात में, इंजील में, और वही दावत जो है वो अब भी है। यानी हर नबी की दावत, हर नबी का पैगाम, हर नबी का मकसदे वजूद और मकसदे बेसत जो है वो एक ही रहा। तो कुरान जो तालीम पेश कर रहा है, जो दावत दे रहा है, वो पिछले नबियों ने अपने सहीफों में पेश की। अब यहाँ पे खास तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, इनको यहूदो नसारा के साथ साथ अहले मक्का भी जो थे वो अपना राहबर और रहनुमा जो थे वो मानते थे, अपना पेशवा मानते थे, और अहले मक्का खास तौर पर उनकी औलाद होने की वजह से अरब में अपना फखर जताया करते थे कि हम तो इब्राहीम की औलाद हैं। और हकीकत यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मुत्तकियों के इमाम थे और अपनी जात में एक उम्मत थे, और अल्लाह ताला कुरान में उनका जिक्र बहुत मोहब्बत और प्यार से करते हैं कि उस्वाए इब्राहीम अपना लीजिए, और ये पैगाम देते हैं कि इब्राहीम का तरीका जो था वो क्या था? वो मुस्लिम हनीफ थे, वो अवाहुम मुनीब थे, वो अल्लाह के बड़े ही पसंदीदा नबी थे, पैगंबर थे। तो अब यहाँ पे भी उनका जिक्र जो है वो किया जा रहा है, और तारुफ कैसे करवाया जा रहा है? इन्नहू कैन सिद्दीकन नबिया, बेशक वो एक रास्तबाज आदमी था। सिद्दीक, सिद्दीक जो है आप देखिए कि स्वाद जो है इसके नीचे कसरा आए, स्वाद पर जब कसर आ जाए, जेर आ जाए, तो इसके मानी जो है वो क्या है? सिद्दीक। उलमा का एक कौल ये है, यानी उलमा के मुख्तलिफ अकवाल हैं कि सिद्दीक कौन होता है। एक कौल ये है कि जिस शख्स ने उम्र भर कभी झूठ ना बोला हो वो सिद्दीक है। उम्र भर कभी झूठ बोला ही नहीं वो सिद्दीक है। और बाज उलमा ये कहते हैं, ये दूसरा जो कॉल है, कि जो शख्स अकीदे और कॉल और अमल हर चीज में सादिक हो वो सिद्दीक है। दिल में अकीदा हो वो ठीक, वही अकीदा जबान पर हो, और जो बात जबान पर हो ठीक वही बात उसके अमल में हो, गोया के उसकी हर बात हर हरकत उसका हर अमल हर रवैया उसके अकीदे और कौल के ताबे हो, वो सदीक हो सकता है। फिर आप देखिए कि सिद्दीक जो है, सिद्दीक जो है इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, सिद्दीकियत के मुख्तलिफ दर्जात हैं। इसका सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा, सबसे आला दर्जा जो है वो रिसालत का है। कि असल सिद्दीक नबी और रसूल है, हर नबी और रसूल के लिए सिद्दीक होना लाजिम है। क्यों? असल में सिद्दीक जो है ये सच्चाई सिद्क से मुबालगे का सीगा है, बहुत रास्तबाज, जिसके कौल और मुताबकत में, जिसके कौल और अमल में मुताबकत पाई जाती हो, यक रंगी हो दो रंगी ना हो, रास्तबाजी उसका शियार हो, उसकी आदत हो, उसकी फितरत हो। और सिद्दीकियत का ये मकाम नबूवत के बाद सबसे आला है, और हर नबी और रसूल अपने वक्त का सबसे बड़ा रास्तबाज और सबसे बड़ा सिद्दीक होता है। तो पहला और आला दर्जा कौन किसका है? सिद्दीकियत का, रिसालत का है। और दूसरा दर्जा जो है वो क्या है कि वो गैर नबी, वो इंसान जो अपने नबी और रसूल का इत्तबा करे, और इस तरह से करे कि सिद्क का ये मकाम हासिल कर ले, अपने नबी और रसूल के इत्तबा में सिद्क का ये मकाम पा ले, तो वो भी सिद्दीक कहलाएगा। इससे मुराद क्या है कि तकवा, तहारत, रास्तबाजी, सच्चाई में वो आगे निकल जाए, वो आगे बढ़ जाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुद कुरान मजीद जो है वो उम्मुहु सिद्दीका के नाम से याद करता है। अब आप देखें कि वो नबिया तो नहीं थी ना, जमहूर उम्मत जो है उनके नजदीक क्या है कि हजरत मरियम जो थी वो नेक थी, वो मुत्तकी थी, वो चुने हुए लोगों में से थी, लेकिन वो नबी नहीं थी, क्योंकि कोई औरत नबी नहीं बनाई गई। और उम्मत मोहम्मदिया में भी सिद्दीकीन मौजूद हैं, और सिद्दीक अकबर कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो। और मुहाजरीन में से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, और अनसार में से साद बिन मुआज़ रजी अल्लाह अन्हो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो अंबिया के बाद उम्मत में खैरुल बशर, खैर सुपरलेटिव डिग्री है ना, इंसानों में सबसे बेहतरीन तस्लीम किए गए हैं रजी अल्लाह अन्हो। और यहाँ पे जिक्र हो रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इन्नहु काना सिद्दीकन, के वो जो थे वो बहुत ही नेक थे, बहुत ही रास्तबाज थे, उनके अकीदे, उनकी बातचीत, उनके अमल में कोई तफावत नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। कितना खूबसूरत तारुफ है ना, सिद्क सच्चाई, और जो इंसान का इखलाक और किरदार है सदाकत सच्चाई, सबसे आला और बुनियादी सिफ्त है। इसीलिए अगर आप जो है वो बुरे अखलाक का जब पढ़ेंगी तो सबसे पहले झूठ उसमें आता है, क्योंकि इसका ऑपोजिट जो है वो झूठ है। नबीया, साथ ही कहा और एक नबी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो जो है वो जलीलुल कदर اور اولول عزم پیغمبروں میں سے تھے, تو اب یہاں پہ نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی, اور رسول جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسالہ سے بھیجا ہوا, اور عربی زبان میں قاصد, ایلچی, سفیر, پیغمبر, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا, ملائکہ کے لیے بھی رسول کا لفظ, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر آدمیوں میں سے جن لوگوں کو اپنے کام کے لیے چنا ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اب یہاں پہ جو نبی بھی ان کو, کیونکہ وہ رسول تھے, اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ہے نا. اہل لغت نے رسالت کے جو معنی بتائے وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول کا لفظ نبی کی نسبت خاص ہے. ہر رسول نبی بھی ہو سکتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. اور جلیل القدر انبیاء جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کی جب تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313, 313 یا پھر 315 بتائی, اور جب انبیاء کی تعداد آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے 124,000 جو ہے وہ بتائی. بہرحال نبی بہت زیادہ بھیجے گئے, اور جو نبی تھے ضروری نہیں کہ ان کے پاس جو ہے الگ سے رسالت کتاب جو ہے وہ بھیجی گئی, بلکہ وہ جو رسولوں کی طرف بھیجی گئی وہ اسی کی تجدید جو تھے وہ کرنے والے تھے. تو دونوں کے مرتبے میں اور کام کی نوعیت میں فرق ہے. جیسے سورت حج رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا, اور آگے بھی آئے چلتی ہے, تو کیا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ ہی نبی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اور نبی دو الگ جو ہے وہ ڈیفینیشن ہیں, الگ اصطلاحیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر نبی جو ہے اس کے معنی کیا ہیں. نبی جو ہے اس کا ایک روٹ تو یہ ہے, کیا جو آپ نے پڑھائی ہے, نون با حمزہ بڑی خبر کے لیے آتا ہے, اور اس سے مراد کیا ہے؟ اگر نون با حمزہ لیں تو نبی کے معنی ہے خبر دینے والے کے, اور بڑی خبر ہے نا, جس میں ساری خبریں جو نبیوں نے دی وہ بڑی خبریں ہی تو تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون با واؤ, نون با واؤ, اس کے نبو کے معنی ہوتے ہیں رفعت اور بلندی کے. تو اس معنی کے لحاظ سے پھر نبی کا مطلب کیا ہے؟ بلند مرتبہ, عالی مقام. اور عربی زبان میں نون با واؤ جو ہے وہ ٹیلے کو بھی کہتے ہیں. اب ٹیلا اونچا ہوتا ہے نا, بلندی پر ہوتا ہے نا, اسی سے انہوں نے یہ معنی بھی لیے کہ نبی جو ہے وہ بلند مرتبہ ہے. اور ایک اور معنی بھی اس کے لیے جاتے ہیں, ایک اور روٹ بھی ہے اس کا, نون با حمزہ. نون با یا لکھ کر نہ اوپر حمزہ ڈال دیں, نون با یا لکھیں جیسے نبی لکھتے ہیں پھر اوپر حمزہ ڈال دیں. اس کے معنی طریق اور راستے کے ہیں. انبیاء کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. تو اب جو ہے اگر کسی شخص کو رسول اور نبی کہا جائے گا تو اس کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر, نمبر دو کیا ہوگا, عالی مقام پیغمبر, نمبر تین کیا ہوگا, وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتانے والا ہے, وہ پیغمبر جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. تو پھر بعض مفسرین کیا کہتے ہیں, انہ کان صدیقا نبیا, تو یہاں پر جو ہے وہ ایک راست باز انسان تھا, اور اس کے ساتھ ہی نبیا کے آپ تین معنی بیان کریں. وہ اللہ کی طرف سے خبریں دینے والے پیغمبر تھے, نمبر دو وہ عالی مقام اور بلند مرتبہ پیغمبر تھے, اور نمبر تین وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے, وہ اللہ کا راستہ بتانے والے تھے. اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, और हमारे लिए उसवाए हसना है, लेकिन यहाँ पर उनकी जिंदगी की एक खास कहानी, एक खास वीडियो, एक खास तस्वीर मेरे और आपके सामने पेश की जा रही है कि खास तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो तस्वीर जो है और वो उनकी जिंदगी का हिस्सा पेश किया जाए जो उनका अपने बाप के साथ मामला था, उनका घर में था। और वो क्या था, इज क़ाल ले अबीही, जब उसने अपने बाप से कहा, गोया कि वो खास मौका जब उनकी और उनके वालिद की आपस में गुफ्तगू हुई और बाप से उन्होंने कैसे कहा, या अबाती, ए मेरे अब्बा जान। और आप देख लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मुत्तकियों के इमाम थे और जिनको यहूदो नसारा और मुशरिकीन सब जो थे वो मानते थे और उनकी इज्जत करते थे, तो अब यहाँ पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो किस्सा सुनाया जा रहा है कि जो जब उन्होंने अपने बाप दादा को तौहीद का पैगाम दिया तो उनके बाप दादा ने, उनके बाप ने उनके साथ क्या सलूक किया। और ये क्यों किस्सा सुनाया जा रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप दादा को जब तौहीद का पैगाम सुनाया तो आपको और आपके चाहने वालों को उनके साथ आपके बाप दादा ने क्या सलूक किया। जिस तरह उनको हिजरत पर मजबूर किया गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, बिल्कुल इसी तरह से आप और आपके साथियों को जो है उनको बुरा भला भी कहा गया और उनको हिजरत पर मजबूर कर दिया गया। और यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा या अबती, और अरबी लुगत के एतबार से ये लफ्ज बाप की ताजीम और मोहब्बत का खिताब है। हजरत खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त थे, उनके अंदर जो अखलाकी खूबियां पाई जाती थी वो कमाल दर्जा थी। अब आप देखिए कि उन्होंने जो तौहीद की तकरीर अपने वालिदे मोहतरम के सामने पेश की है, यानी वालिद तो मुशरिक था लेकिन वालिदे मोहतरम कह रहे हैं ऐ मेरे अब्बा जान, इससे क्या बात पता चलती है कि उनका मिजाज और किरदार एतदाल पर था। और ये एक बेनजीर तकरीर है, ये एक बड़ी खूबसूरत तकरीर है कि एक तरफ बाप है शिर्क और कुफर पर और खुली गुमराही पर, और दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो उनके कुफर और शिर्क की वजह से ये नहीं कहते कि ए मुशरिक, ए काफिर, ए लानती, ए बुरे, यानी बुरे भले के अलकाबात से नहीं नवाजते। अपना रवैया भी जानते जाइए, अपने दिल और दिमाग और अपने किरदार को परखते जाइए कि इर्द गिर्द कुफर और शिर्क, और अपने घर के अंदर बाजुका जब हम नाफरमानियां देखते हैं तो हमारा क्या रवैया होता है, लेकिन वो अपने घर के अंदर जो हैं अपने मुशरिक और काफिर बाप को जो देख भी रहे हैं कि वो जो है वो काफिर है, वो बुतगर है, वो बुतों को पूजने वाला है, लेकिन कहते हैं या अबाती, ए मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदू, आप क्यों इबादत करते हैं। आपने सूरत फातह जिस दिन पढ़ी थी, सूरत फातहा, उस दिन आइन बादाल के तीन मानी पड़े थे, एक मानी है वर्शिप, दूसरे मानी है सबमिशन ओबीडियंसी, और तीसरे मानी है सर्विस, सर्वेंट बन जाना। तो क्या मानी है, पहले पूजा प्रस्तिश करना, दूसरे मानी अतात और फर्माबरदारी के, और तीसरे मानी नौकरी कर लेना, कभी कभी अतात नहीं करनी, नौकर की तरह करनी है, सर्विस। जी जनाब, हाजिर जनाब, जो कहा जा रहा है बिला चूनो चरा उस पर अमल के लिए तैयार हैं। बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है। आज क्यों उम्मत मुस्लिमा के हालात नहीं बदल रहे, आज क्यों उम्मत मुस्लिमा कसम परसी की जिंदगी बसर कर रही है, आज क्यों मुसलमानों का खून जो है वो अर्जा है, सस्ता है, आज क्यों उम्मत मुस्लिमा की औरतों और बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, आज क्यों जहां मुसलमानों का नाम आता है साथ ही नंगो आर, बेइज्जती और बदनामी का तसव्वुर पाया जाता है कि ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। आज माओं की कोख जो है वो ऐसा किरदार पैदा करने से बांझ हो चुकी है। एक तो है ना वैसे माँ का बांझ होना, औलाद ही पैदा करने के काबिल ना रहे। आज माएं तो बहुत है, औलादे भी बहुत है, बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन बराहिमी नजर, बराहिमी किरदार जो है वो नहीं मिलता। ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, बहार हो के खिजान, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार। और वो अपने बाप से कहते हैं कि आप क्यों जो है वो इबादत करते हैं, माला यशमाऊ वला युबसिर, और इबादत से क्यों मना कर रहे हैं। उन्होंने दो दलीलें दी हैं कि आप जिनकी इबादत करते हैं ना वो सुन सकते हैं और ना ही वो देख सकते हैं। अब आप देखिए ऐसा होता है दुनिया में कि बहुत सी शख्सियतें होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं कि वो देखती भी हैं सुनती भी हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये दलील दी ना, नंबर वन कि आपके बुत जो हैं जिनको आप अपने हाथों से बनाते हैं, वो लकड़ी के हैं, वो पत्थर के हैं, वो ना तो देखते हैं ना ही सुनते हैं, तो आप उनको पूछते क्यों हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग हैं वो तो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, फिर क्या हम उनको नहीं पूछ सकते। लेकिन आगे दलील क्या है, वला युगनी अन का शैया, असल बात क्या है, और ना वो आपका कोई काम बना सकते हैं, वो आपको कोई फायदा नहीं दे सकते। दुनिया में और जितने भी जो है वो अरवाह की, इंसानों की, नेक लोगों की, जिसकी भी पूजा की जाती है, वो इंसान के कोई काम नहीं आ सकता। वो तो खुद भी अल्लाह के जुदो करम के, अल्लाह के एहसान के जो है वो मुंतजिर होते हैं और जरूरतमंद होते हैं, खुदा ये कि वो किसी की मदद करे। तो ना ही बुत और रूहें और ना ही पत्थर और दरख्त और ना ही कोई इंसान जो है वो किसी की मदद कर सकता है। वला युगनी अनका शैया, कि वो आपका कोई काम भी जो है वो नहीं बना सकते। इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि दुनिया में भी ऐसा होता है कि जब इंसान को जरूरत पेश आए तो कोई उसकी मदद कर दे, है ना। तो असल बात यह है कि मकसद दुनिया की मदद नहीं, बल्कि क्या है कि गनी कर देना उसको, उसके काम आना, और वो क्या है कि जहन्नुम की आग से उसको बचा लिया जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं कि ये बुत ना इनकी, यानी आपके हाथों के घड़े हुए मूर्तियां हैं, तमसील हैं, ये तो ना सुनते हैं और ना ही देखते हैं और ना ही आपका ये कुछ काम बना सकते हैं। तीन दलीलें देते हैं और फिर कहते हैं या अबाती, ऐ मेरे अब्बा जान। इतना खूबसूरत अंदाज है, लगता है दिल पिघल कर जो है वो सामने आ जाएगा। बड़ा रकीक, दर्दमंदाना, शफीकाना अंदाज है, अदब है, एहतराम है। इससे दायाना किरदार भी पता चलता है कि जो मुशरिक हो, जो काफिर हो, जो दहरिया हो, इसका ये नहीं मतलब कि उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे। बात करेंगे, पैगाम देंगे, दावा करेंगे, लेकिन अदब और एहतराम का दामन जो है वो हाथ से छोड़ेंगे नहीं। या अबती, ए अब्बाजान, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी। अब दूसरी बात उनको क्या कहते हैं, तौहीद का पैगाम दिया है पहली आयत में, बड़ा खूबसूरत दिया है 42 आयत में। 43 आयत में क्या कहते हैं, ए अब्बाजान, कद जाअनी मिनल इल्मी, मेरे पास अल इल्म आया है। और अल इल्म से मुराद क्या है, वही अल इल्म से मुराद क्या है, हकीकी इल्म जो अल्लाह की तरफ से वही के जरिए आया है, कि मैं जो बात कह रहा हूं ये इल्म नहीं, अल इल्म है, ये खास इल्म है, ये नबुवत का इल्म है। मालम याती का, जो आपके पास नहीं आया, ये मेरे पास आया है, आपके पास तो आया ही नहीं। तो जब ये अल इल्म है तो आपका काम फिर क्या है, फत्ता बेनी, बस आप मेरे पीछे चलें, मेरे फुटप्रिंट्स पर मेरा इत्तबा करें, और अहदी का सिरातन सविया, मैं आपको दिखाऊंगा, अहदी का हदायत, रास्ता बताना, खुदन की तरफ लेके चलना, मैं आपको बताऊंगा सिरातन, रास्ता, सविया जो बराबर है। और बराबर रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है, ए दिन सिरात अल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम का, राह तौहीद का। तो कहते हैं कि आप मेरे पीछे पीछे चलें और मैं आपको तौहीद का रास्ता जो है वो बताऊंगा। अब आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिद्दीकियत, उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई क्या थी? के तौहीद के रास्ते पर चलने वाले थे और तौहीद के रास्ते की दावत देने वाले थे। या अबती ला ताबुदिश शैतान, ए मेरे अब्बा जान, शैतान की पैरवी ना करें, शैतान की बंदगी ना करें। ला ताबुद, बंदगी मत कीजिए शैतान की, पूजा मत कीजिए शैतान की। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके वाले तो शैतान की बंदगी नहीं करते थे, वो तो बुतों की बंदगी करते थे, तो यहाँ पर शैतान की बंदगी क्यों कहा गया? असल में शैतान की बंदगी जो है वो इसलिए कहा गया कि शैतान जो है वो क्या करता है, वो उल्टे रास्ते पे चलने की दावत देता है। और शैतान ही जो है वो दुश्मन है, वो हकीकी दुश्मन है जो इंसान को तौहीद के रास्ते से भटकाता है। और आपको पता ही है कि किस्सा है आदम और इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। तो शैतान ने कसम खाई थी कि तौहीद के रास्ते से तुझे भटकाऊंगा, है ना, सिराते मुस्तकीम से तुझे भटकाऊंगा। आदम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत को क्या करेंगे, तौहीद के रास्ते से शैतान भटका कर दम रहेगा, दम लेगा। तो अब जो शख्स भी शैतान की का कहना मानता है, तो दरअसल क्या है कि शैतान ही तो कहता है कि बुतों की पूजा करो, शैतान ही तो कहता है ख्वाहिशात की पूजा करो, शैतान ही तो कहता है बेहयाई और बेशर्मी के रास्ते की तरफ जो है वो चलने लगो। तो यहां पर कहा तो ये जा रहा है कि तीसरी बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कही कि आप शैतान की जो है वो बंदगी ना करें। तो शैतान की बंदगी करना दरअसल बुतों की बंदगी करना है। दरअसल असल बात क्या है कि शैतान के वसवसे और बहकावे ऐसे होते हैं कि फिर इंसान बुतों की परस्तिश करने लगता है, जो सुनने देखने की ताकत भी नहीं रखते, नफा नुकसान पहुंचाने की उनके अंदर कुदरत भी नहीं होती। तो बुतों की पूजा दरअसल शैतान की पूजा है। तो यहाँ पे दरअसल जड़ की तरफ ले जाया जा रहा है कि वालिद से तीसरी बात कहते हैं कि आप शैतान की बंदगी ना करें, अशैतान। और शैतान जिनों में से हो या इंसानों में से हो, और खुद अपना ही नफ्स क्यों ना शैतान बन जाए। इन शैतान कान लिर्रहमान असिया, बेशक शैतान जो है वो तो रहमान का नाफरमान है। शैतान अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाता है, मासियत पर। शैतान ने तो कहा था आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त का फल चख लीजिए, तो उन्होंने नाफरमानी की थी ना। तो यहां पर भी क्या बात है कि शैतान के आप साथी मत बनिए, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान के आप साथी बने और अल्लाह ताला को जो है वो नाराज कर दें। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं अपने वालिद के सामने, और उसके बाद जो है वो क्या बात बताते हैं कि शैतान अर रहमान। अब आप देखें, शैतान भी मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा महरूम है वो तो रहमत से, और रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाले की नाफरमान पर वो आमादा कर देता है। बहुत ज्यादा रहम करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। उसका ये रहम है इंसानों पर कि उसकी नाफरमानी के बावजूद उनको जीने का दुनिया में मौका देता है। और शैतान कैसा बदबख्त है कि लिर रहमान की मासीयत पर, नाफरमानी पर आमादा करता है। फिर चौथी बात कही, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, ए मेरे अब्बा जान, मुझे डर लगता है, मैं खौफ जदा हूं, मुझे डर है कि कहीं आपको आप मुब्तिला ना हो जाए रहमान के अजाब में। कि आप शैतान का जब कहना मानेंगे तो फिर क्या होगा, रहमान का बहुत ज्यादा रहम करने वाले का अजाब तुझ पर आकर जो है वो आपको आके छू लेगा, आप उसमें मुब्तिला हो जाएंगे। फतकून अली शैतानी वलिया, और आप शैतान के फिर साथी बनकर रहेंगे। फतकून, आप हो जाएंगे शैतान के वली, शैतान के दोस्त, शैतान के साथी। तो इससे मुराद क्या है, ये क्यों कहा कि आप शैतान के वली और साथी बन जाएंगे? असल बात क्या है कि अगर आप शिर्क और कुफर पर कायम रहे तो और इसी हालत में आपको मौत आ गई तो अल्लाह के अजाब से तो आपको कोई नहीं बचा सकेगा, या दुनिया ही पर आपकी नाफरमानी की वजह से आप पर अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो आप तो शैतान के साथी बनकर जो है वो क्या होंगे, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएंगे। और आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप के अदब और एहतराम के तकाजों को पूरी तरह मलहूज रखते हुए निहायत शफकत और प्यार के लहजे में नंबर वन क्या किया, बाप को तौहीद का पैगाम सुनाया, आयत नंबर 42। नंबर दो जो है फिर क्या किया कि तौहीद का पैगाम सुनाने के साथ ही जो है उनको सिराते मुस्तकीम की हदायत की, तौहीद के रास्ते की तरफ जो है उनको बताया कि नबूवत को जो खास अल इल्म मिलता है उसकी आप पैरवी कीजिए। और नंबर तीन जो है उनको प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो बुतों की पूजा करने से, शैतान की पूजा करने से मना किया। और नंबर चार उनको अजाब से डराया, और वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते थे। अब आप देखें कि दूसरी तरफ बाप क्या कहते हैं, क़ाला रागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, बाप ने कहा इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है। अब आप देखें कि वालिद को चाहिए था कि अब बाप बेटे को कहता या बुनैया, उन्होंने कहा था ना या आबाती, तो बाप कहता या बुनैया, लेकिन अब यहां पर जो है आजर जो था वो या इब्राहिम से मुखातिब कर रहा है, नाम ले रहा है। तो किसी का नाम लेने की बजाय अगर उसको या अबाती या बुनैया, तो ये मोहब्बत अदब और एहतराम का तकाजा है ना, है ना। जैसे वालिद का नाम लेना अदब नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, इसी तरह उस्ताद का भी नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे बाज लोग जो हैं उस्ताद के लिए कोई आपा कोई उस्ताजा, जैसे आप इसको पढ़ें पढ़ें आप इसको तदब्बुरुल कुरान को, तो अमीना हसन इस्लाही साहब जहां भी अपने उस्ताद का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, उस्ताज उस्ताज। तो मुजक्कर उस्ताज है और मुअन्नस उसका उस्ताजा है, है ना, उस्ताद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज लोग आपी आपा बाजी कुछ भी आप अदब से कह सकते हैं। तो वालिद हो वालिदा हो उस्ताद हो या फिर कोई भी हमारा हमसे बड़ा हो तो उसका अदब और एहतराम करना ये बहुत अच्छी बात है। और बाज लोग तो छोटों का भी करते हैं कि छोटों को भी जमा के सीगे से इस्तेमाल करते हैं। और एक दफा कोई मजाक में कहने लगा कि बाज लोग जब हमसे बात करते हैं तो तुम करके करते हैं और जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं हम ऐसा करेगा, तो कहने लगा हमें तो गुस्सा आ गया कि हमें तो तुम कहता है और अपने आप की जब बात करता है तो हम जमा का सीगा इस्तेमाल करता है, है ना। तो बहरहाल असल बात क्या है कि उनके वालिद उन्हें कहते हैं कि क्या तुम जो हो वो फिर गए हो अन आलिहती, आलिहती का मतलब क्या है, मेरे माबूदों से। इससे पता चलता है एक इला नहीं था, आलिहती आलिहा बहुत से खुदा थे, उससे बहुत से माबूद उन्होंने बनाए, यानी बहुत से बुतों की वो पूजा करते थे। फिर साथ ही धमकी देता है बाप, कहता है लैलम तनतही, अगर तू बाज ना आया, अगर तू जो है तूने कहना ना माना, किस चीज का कहना ना माना, ये तौहीद का राग, ये तौहीद की स्टोरी और ये कहानी और पैगाम जो आप दिन रात देते रहते हैं, अगर तू इसे बाज ना आया लअर्जुमन्नका, तो मैं जरूर ब जरूर तुझे संसार कर दूंगा। अब आप देखिए कि रजम से मुराद यहां पर क्या है कि पत्थरों से तुझे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन और दूसरा रजम क्या होता है कि गालम गलोच, मुंह से ऐसी बातें कहना कि जैसे किसी पर पत्थर गिर रहे हो ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की दौर में अहले मक्का ने क्या किया था, जादूगर साहिर काहिन मजनू दीवाना, तो वो रजम करते थे, बुरा भला कहते थे। तो यहां पर जो है बाप दोनों तरह से आपको जो है वो धमकी दे रहा है कि मैं तुझे संसार कर दूंगा। और तीसरी बात क्या कही, वह जुर्नी मलिया, कि तू मुझसे अलग हो जा हमेशा के लिए, यानी एक अरसा दराज तक। इसका मतलब क्या है कि अगर तू मेरे माबूदों से बाज ना आया उनको बुरा भला कहने से, तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। और कैसे संसार कर दूंगा, यानी बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। तो मली जो है, कभी तो ये जमाने तवील के लिए आता है, इसका मतलब क्या है कि बस तू जो है हमेशा के लिए वह जुर्नी मुझसे अलग हो जा। और कभी जो है वो इसके मानी क्या होते हैं, जैसे सही सालिम के भी, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, कहीं मुझसे अपने हाथ पैर ना तोड़वा लेना। तू सही सालिम रहे, तू मुझसे बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, ये भी इसके मानी जो है मुराद लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या, मेरे सामने से दफा हो जा, मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। वह जुर्नी मलिया। तो यहाँ पे बाप जो है वो तीन बातें कहता है। नंबर वन के तू मेरे बुतों को बुरा भला कहता है। नंबर दो, तू बाज आ जा वरना रजम रजम कर दूंगा। नंबर तीन, बस दफा हो जा, दूर हो जा, सही सालिम यानी मुझसे दूर हो जा। अब जो है वालिद की इस बात के नतीजे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं قال السلام عليك के आप पर सलाम है। और सलाम के भी दो मानी हैं। एक तो सलाम के मानी क्या हैं कि जैसे किसी को जब इंसान मिलता है या उससे जुदा होता है तो सलाम करता है। अब आप देखिए कि बाप कितना गुस्से में है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको विदाई सलाम करते हैं, बड़े शाइस्ता तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनको सलाम करके अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये किसके मानी है कि विदाई सलाम करना, जैसे इब्तदा में किसी को सलाम किया जाता है तो वो ऐसे ही वो विदाई यानी जुदा होते वक्त सलाम कर देते हैं। दूसरे इसके मानी ये हैं कि कता ताल्लुक, कता ताल्लुक, कता ताल्लुक के मानी में भी जो है ये कुरान में आता है। कैसे, वाइजा ख्वातबहुमुल जाहिलून, कि जब जाहिल उनके मुंह को लगते हैं तो क्या करते हैं, क़ालू सलामा। वाइजा ख्वातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल उनसे जाहिलाना बातचीत करते हैं तो उनसे दू बदू होने की बजाय वो उन्हें सलाम कर देते हैं। ये सूरत अल फुरकान आयत जो है वो 63 में ये बात आती है कि मोमिनीन के ये औसाफ होते हैं कि जो अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देते। जब वो देखते हैं ना कि अब ये बहस से उतर आया है और झगड़ा करने लगा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि मुखालफत के बावजूद जो है कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, साइड पर हो जाते हैं, सलाम करके अलग हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कता तल की। इसी तरह सूरत कसस रुकू 6 में भी जो है हमें ये बात जो है वो मिलती है कि मोमिन लोग जो है वो खामोशी से साइड पर हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों मानी मुराद हैं। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं, सास तक फिरूला का रब्बी, वो कहते हैं कि मैं अपने रब से दुआ करूंगा, सास तक फिरू लका, कि मैं अनकरीब मगफिरत की दुआ करूंगा तेरे लिए, रब्बी अपने रब से, अपने परवरदिगार से। तो अस्तगफार क्या है कि वो तुझे माफ कर दे, वो तुझे बख्श दे। तो आप देख लीजिए कि यहां पर जो है आप देखिए कि कैसा था उनका सलाम करना, कैसा था अपने बाप की भलाई चाहना, बाप का रजम की धमकी देना, बाप का जो है वो इतना तलख अंदाज है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं आपके लिए इस्तगफार करूंगा। अब यहाँ पे एक अशकाल आता है। अशकाल का क्या मतलब होता है, ये आप अक्सर तफसीर में भी पढ़ेंगी और अरबी की अगर तफसीर पढ़ेंगी उर्दू की। अशकाल का मतलब होता है कि एक जो है वो उलझन पैदा होती है, एक बीच में जो है वो मुश्किल पैदा होती है। अब वो मुश्किल अशकाल क्या है कि किसी काफिर के लिए इस्तगफार करना तो ममनू और नजायज है। तो एक पैगंबर थे, और पैगंबर भी वो जो रोल मॉडल, पैगंबर तो सारे ही रोल मॉडल है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने दो पैगंबरों के लिए खास तौर पे कुरान में कहा कि उनका उनके पीछे चलना तुम्हारे लिए क्या है, उस्वाए हसना, बेहतरीन नमूना है कि तुम उनके पीछे चलो। तो फिर अल्लाह ताला ने क्यों कहा तुमको कि मतलब उनका उनकी इतनी हैसियत के सिद्दीक नबिया, इतनी मोहब्बत से उनका जो है वो تعارف اللہ نے کروایا، جبکہ وہ اپنے مشرک باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ممانعت سے پہلے وعدہ کر لیا تھا باپ سے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور ممانعت جو تھی وہ بعد میں کر دی گئی، ہے نا. اور سورۃ ممتحنہ میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی کہ الا قول ابراہیم علیہ ابی لاستغفرن لک. اسی طرح سورت، یعنی سورت ممتحنہ سے کیا پتا چل رہا ہے کہ وہ ان کا وعدہ تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن سورت توبہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، ہے نا، تو یعنی نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور مومنوں کے لیے بھی نہیں کہ وہ استغفار کریں کافروں کے لیے، نا. اسی طرح اس کے بعد دوسری آیت میں کہا وما کان استغفر وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہی، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا تھا وہ کیا تھا، الا موعدت وعدہا ایاہو فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرہ من، کہ ان کا استغفار کرنا اور اس کا وعدہ باپ کے کفر پر جمے رہنے کا اور خدا کا دشمن جب ثابت ہونے سے پہلے کا تھا نا، یعنی باپ کافر ہے اور کفر پر جمع رہا، تو یہ وعدہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے کیا تھا، جب ان کو پتا چل گیا نا تو انہوں نے پھر برات کا اعلان کر دیا. تو یہ سورت توبہ سے سورت ممتحنہ میں آپ اس بات کو پڑھ سکتی ہیں. تو یہاں پہ بھی ابتدائی دور کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ استغفار کروں گا اپنے رب سے. بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر وہیں سے خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کافروں کے لیے استغفار کی دعا کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جاتی ہے، نمبر دو، پھر احادیث سے کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نمبر تین، پھر صحابہ کے اقوال سے کی جاتی ہے، پھر نمبر چار، پھر عرب کی لغت سے کی جاتی ہے، ان کے اشعار، ان کے ادب سے، کہ وہ لوگ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، ہے نا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ باقی جو ہے وہ کریں. تو یہاں پہ بھی اصل میں انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں انہو کا نبی حفیہ، کہ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ حفیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ مجھ پر بہت زیادہ جو ہیں مہربان ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جب کسی مہربان کے سامنے اپنی تکلیف، اپنی مشکل، اپنی ضرورت کو رکھا جائے تو پھر وہ اس کو پوری کر دیتا ہے. وَآتَذِلُكُمْ، اور میں تم سے الگ ہوتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. دعوت کا کردار پہلا تھا، اب باپ کے رویے کے بعد جو ہے وہ ان کا کردار ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. وَآتَذِلُكُمْ، کم کا صیغہ آیا یہاں پہ، حالانکہ باپ تو ایک تھا نا، یعنی باپ اور باپ جیسے سارے جو لوگ تھے، جو بھی باپ دادا کے لوگ ایسا کام کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں وما تدعون من دون اللہ، اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ہے نا. تو پھر میں کرتا کیا ہوں، وعدو ربی، اور میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کروں گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وعدو جو ہے وہ عبادت کے معنی میں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں میں صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں اپنے رب کی بندگی کروں گا. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، میں اپنے رب کو بلاؤں گا، میں اس سے مانگوں گا. عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، امید ہے کہ میں اپنے رب ہی کو پکار کر نامراد نہ ہوں. اور اس کا مطلب کیا ہے، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کے کبھی محروم، کہ میں نے جب اپنے رب کو پکارا تو کبھی نہ مراد ہی نہیں ہوا، میرے رب نے مجھے دیا اور خوب دیا. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 47 اور 48 میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، نمبر ون، انہوں نے اپنے باپ سے قطع تعلقی اختیار کر لی، ہے نا، قطع کلامی کر لی، اور اچھے طریقے سے سلام کر کے ان سے الگ ہو گئے. नंबर दो, उनके अंदर दर्द मंदी और रिक्कते कल्बी इतनी ज्यादा पाई जाती थी, वो मोम की तरह नरम थे। इसीलिए तो कहा कि अस्तगफार करूंगा अपने रब से, और क्यों इन्नहु काना बी हफिया, वो तो बहुत ज्यादा मेहरबान है मुझ पर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है कि बड़े दर्दमंद थे, बड़े रकीकुल कल्ब थे, हलीम थे। इसलिए उन्होंने कहा, मतलब बाप का कुफ्र उनके दिल में बाप की नफरत ना पैदा कर सका कि वो बाप के लिए दुआ ही ना करें। नंबर तीन जो है, ये पता चलता है कि यहां पे वो पत्थर की तरह सख्त है। अस्तग़फिरुलक रब्बी, मोम की तरह नरम। व आतज़िलुकुम, नंबर तीन, पत्थर की तरह सख्त। गोया के उनके अंदर मदाहनत नहीं थी, कंप्रोमाइज नहीं था, उनका किरदार एतदाल था, मोतदिल थे। जहां नरमी की जरूरत थी नरमी इख्तियार की, जहां अदब और एहतराम की जरूरत थी, या अबती या अबती या अबती कहते रहे, और जहां पे उनसे कट जाने की और हट जाने की जरूरत थी, सलामुन अलैक व आतज़िलुकुम, पुकार उठे। ये है एक मोमिनाना किरदार। और हमारा क्या रवैया होता है, कभी तो जब किसी को अपने घर वालों को बुराई पर देखते हैं तो उनको काफिर कहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जैसे एक औरत कहती कहती है खुद कि मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, तो मैं उसके साथ कभी खाना नहीं खाया, और मैं कहती थी मैं तुझे अपने हाथ से खाना भी नहीं दूंगी, है ना। तो क्या आपका ये रवैया उसको नमाजी बना देगा, है ना। या किसी का अपने बच्चों को मारना पीटना, उसको बुरा भला कहना, उसको गालियां देना, है ना, और अपनी जबान को जो है वो नापाक और पलीत कर लेना। और समझना ये कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, बच्चों को कुरान नमाज दीन की तरफ ला रहे हैं, कभी खिंजीर की औलाद, कभी सुअर की औलाद, कभी जो है वो तुम तो हो ही काफिर, तुम तो हो ही मुशरिक, तुम तो हो ही यहूदो नसारा के रास्ते पे चलने वाले। आप देखें, हमें कुरान जो किरदार पेश कर रहा है वो ये नहीं है। क्या बता रहा है कि एक तरफ मोम की तरह नरम है, दूसरी तरफ पत्थर की तरह सख्त है। वह आतज़िलुकुम, तीसरी बात क्या है कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने रजम की जो है ना धमकी दी है ना, रजम करने की, है ना, रजम की धमकी दी है। खानदान है, बाप है, बाप एक ऊंचे ओहदे पर है। तो कहा कि नहीं, ये वही वाला किरदार है जो कि सूरत कहफ में था, असहाबे कहफ का, कि वो जो है वो अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अलग हो जाते हैं, और अल्लाह ताला से कहते हैं कि ए अल्लाह, यानी ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, तू हमारा मामला दुरुस्त कर दे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। वहां पे वो भी अल्लाह को पुकारते हैं ना, अब यहाँ पे ये भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं कि तीसरी बात, अलग हो जाऊंगा। चौथी बात, वमा तदउन मिन दुनिल्लाह, कि जिन बुतों को तुम पुकारते हो मैं उनको नहीं पुकारूंगा। तुम मुझे रजम करने की सजा देते हो, उसकी धमकी देते हो, वो सजा देना चाहते हो, नहीं, मैं उनको नहीं पुकारूंगा। पांचवी बात क्या कहते हैं, वअदउ रब्बी, मैं अपने रब को पुकारूंगा, मैं उसी की बंदगी करूंगा। तो ये है एक मोमिनाना किरदार, दावा करना है मोहब्बत प्यार के साथ, हिकमत के साथ, सजदों में गिरकर भी दुआ करनी चाहिए अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, रो रो कर भी दुआ करनी चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और फिर उसके साथ, लेकिन उनका कुफर जो है, उनका शिर्क जो है, उनका बागियाना रविश औलाद अहले खानदान दोस्तों की जो है, वो आपकी तौहीद परस्ती पर असरअंदाज ना करे, वो हमारी मेरी तौहीद परस्ती पर असरअंदाज ना हो। यानी मुझे तो तौहीद का रास्ता ही अपनाना है, वादू रब्बी। तो ये है अहम बात, जो पांचवी बात है कि मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता रहूंगा और करूंगा। और साथ ही कितना यकीन है, कैसा तवक्कुल है, आप सोचे तो सही, कैसा एतमाद है। असा अल्लाह अकून बिदुआ रब्बी शकिया, मैं अपने रब को पुकार कर कभी ना उम्मीद नहीं हुआ। असा करीब है, उम्मीद है। आप देखें कि ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, खुद ही मौजें ले चली कश्ती को साहिल की तरफ। हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाएं, कितने ही मायूस कुन क्यों ना हो, रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, कितनी ही سخت کیوں نہ ہو، کبھی اپنے حالات سے تھکنا نہیں چاہیے، کبھی بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے، کبھی بھی سر کو پھوڑ لینا نہیں چاہیے. میں نے پچھلے دنوں سنا کہ ایک عورت نے جو ہے وہ گولیاں کھا لیں اپنے گھر کے حالات سے مایوس ہو کر. پھر گھر والے اس کو لے کر گئے، پھر وہی شوہر جو اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا پھر اس کو ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن گولیاں کھا کر، زہر کھا کر، گولی مار کر اپنی خودکشی کر لینا، اپنی جان مار لینا، یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. ڈپریشن کا کبھی شکار نہ ہو، مومن کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا. آئیے قرآن سے دل لگائیں، قرآن سے اپنی بیماریوں کا حل ڈھونڈیں، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، قرآن کی طرف رجوع کریں. اور ابراہیم علیہ السلام کے کتنے سخت حالات ہیں، باپ مخالف ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ تو کوئی مایوس نہیں ہوتے، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں، اللہ کون بے دعائی ربی شقیہ، کہ میں تو اپنے رب کو پکار کر کبھی نا امید نہیں ہوا. اور پیچھے آپ بھول گئی، آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا نا، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، سورت مریم آیت 4 میں انہوں نے کہا اے پروردگار میں کبھی تجھے دعا مانگ کر نہ مراد نہیں رہا. اصل بات یہ ہے ہماری تمام مسائل مشکلات کا حل قرآن میں ہے، قرآن دوا ہے اور دعاؤں میں ہے، قرآن دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے. اور مسائل مشکلات جو ہیں جب بھی ہوں نماز پڑھا کریں، قرآن سے دل لگایا کریں اور دعا مانگا کریں. اور ہم کہتے ہیں یہ سب کام ہم نے کر لیے ہیں، اب کوئی اور نیا طریقہ بتائیں، کوئی اور علاج بتائیں، کوئی اور دعا بتائیں. اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو نے چکھی ہی نہیں، تو نے قرآن سے مانگی ہی نہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو آؤ تجھے بتاؤں کہ امامت کی حقیقت کیا ہے، متقیوں کی حقیقت کیا ہے. قرآن سے ویسے مانگنا، اللہ سے ویسے مانگنا جیسے پیغمبروں نے مانگا ہے نا، اور اسی طرح دعا اس یقین سے مانگنا کہ اللہ قبول کرے گا. مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات اکثر یاد آتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے عمر تجھے دعا مانگنے کی توفیق تو نصیب ہو جائے. فلما تزلہم، پھر جب وہ ان سے جدا ہو گیا. اب کون جدا ہوا ہے یہاں پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ دیکھیں کس سے جدا ہوئے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، کیونکہ اے تزل ہم، پھر ہم کی ضمیر آئی ہے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے ملک سے، اپنی بستی سے. میں اور آپ بھی تو جدا ہوئے نا اپنی بستی سے، اپنے ملک سے، اپنی گلیوں سے. کس لیے ہوئے؟ ڈالر کے لیے، فیوچر کے لیے، کیریئر کے لیے، مستقبل کے لیے، سٹیزن شپ کے لیے. کوئی امریکہ کی، کوئی کینیڈا کی، کوئی برطانیہ کی، اور کوئی سوئٹزرلینڈ کی، ہے نا؟ کاش کہ ہم سٹیزن شپ کے لیے جدا ہوتے لیکن جنت کی، ہے نا؟ کاش کہ ہم فکر کرتے کہ ہمیں سٹیزن شپ مل جائے، ہمیں داخلہ مل جائے، ہم وارث بن جائیں جنت کے. اب وہ جدا ہوئے، سب کچھ چھوڑ دیا، ہے نا؟ سو خداون ملے، ایک سے ایک سجدہ طلب، سخت مراحل سے خدا تک پہنچا انسان، سخت مراحل سے خدا تک پہنچا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں متقیوں کے امام بنے تھے، ایسے ہی تو نہیں اللہ نے ان کو جو ہے وہ اپنے چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا تھا، ایسے ہی تو نہیں وہ صدیق النبیہ تھے، وہ سچے تھے، جو کہہ رہے تھے اس پر عمل کرنے میں وہ سچے تھے. فلما تزلہم، پھر جب ان سے جدا ہو گئے. وما یعبدون من دون اللہ، اور ان تمام معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے، یعنی وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے، معبودان غیر اللہ سے جب وہ جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، تو اب یہاں سے نا ہجرت کی برکتیں بتائی جا رہی ہیں. ہجرت کی تو اللہ نے برکتیں دی نا، انہوں نے گھر بار چھوڑا تو اللہ نے ان کو نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں اترے تو فرشتے نازل ہوئے. ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے، میری اور آپ کی مشکل کیا ہے؟ کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے، कोई मेहनत और मुशक्कत करना नहीं चाहते, ना उठना चाहते हैं, ना जागना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना सबक याद करना चाहते हैं, ना बातों की, ना दोस्तों की, ना खाने पीने की, ना बिस्तर की, किसी किस्म की कोई कुर्बानी देना नहीं चाहते, और कहते हैं कि सबक याद ही नहीं होता, रूट वर्ड समझ में ही नहीं आते, टेस्ट की तैयारी नहीं होती। जो आ सकते हैं वो ऑनलाइन पर राजी हो जाते हैं कि घर बैठेंगे तो घर ही सुन लेंगे। जो घर बैठकर सुन सकते हैं वो कहते हैं चलो कंप्यूटर में बाद में तस्कीरुल कुरान में सुन लेंगे ना, तस्कीरुलकुरान.com जो है वो बाद में आ ही जाता है ना ऊपर, तो ये और आसानी है कि अपनी सहूलत से जब चाह हम सुन लें। इस तरह तो बाउंड होना पड़ता है ना, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी जो सीडी का इंतजार कर रहे हैं कि सीडी जब मिलेगी तो फिर हम आराम से जो है वो उसको तैयार हो जाएंगे ना। आप याद रखिएगा, आप इस बात को अपने दिल और दिमाग पर लिख ले, जो जितनी कुर्बानी करता है, जो जितनी मेहनत करता है, वो उतना ही पाता है। मन जद्दा वजादा, कुछ हाथ नहीं आता, बे आहे सहरगाही। ये जो सुबह उठकर तहज्जुद में आहें भरता है ना, वही कुछ पाता है। जो शब को उठता है वो अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो डरता है वो शुरू रात में चल देता है, जो शुरू रात में चलता है वो वक्त पे मंजिल पे पहुंच जाता है। याद रखो, अल्लाह का ये सौदा सस्ता नहीं, और अल्लाह का ये सौदा जन्नत है। ख्वाहिश सबने की कि समर शुरू हो रहा है, क्लास जल्दी शुरू कर दें, क्लास जल्दी शुरू कर दें। मैंने किसी एक का भी नहीं पढ़ा कि किसी ने कहा देर से शुरू करें, लेकिन अब कितने लोग हैं जो जल्दी आने को तैयार हैं। क्लास का टाइम तो वही रखा ना, कितने लोग हैं फिर आए 9 से लेकर और 9:30 तक वो फिर करें मुज़ाकरा और करें क्लास और सबक सुनाएं आकर अपना, है ना। और कभी वक्त था कि शागिर्द उस्तादों का इंतजार किया करते थे, और फिर आज वो दौर है कि उस्ताद शागिर्दों का इंतजार करते हैं ना, और उनको फोन करें, उनको याद दिलाएं, उनकी मिन्नतें करें, उनको बताएं, गोया कि उस्तादों का बहुत उसमें कोई भला है, है ना। तो भला किसका है? हर उस तालबिल का जो अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहता है और जन्नत को हासिल करना चाहता है ना। और जब तक नियत के अंदर इखलास नहीं होगा, कोशिशों में सदाकत नहीं होगी, नियत बात और अमल में, उस वक्त तक ये कुरान नहीं मिल सकता। दुनिया मिल सकती है, डॉलर मिल सकता है। कल कोई कह रहा था हम तो रहे भी नहीं और सिटीजनशिप मिल गई, फिलहाल तो रहा भी नहीं था उसको सिटीजनशिप मिल गई, और कोई रहता भी है तो उसको नहीं मिलती, है ना। तो बहरहाल ये तो दुनिया की बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फलम्मा तज़लहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह। जब उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन सारे घर वालों को छोड़ दिया, उनसे मुराद कौन है, उनके खानदान वाले भी, उनका बाप भी, और उनके शहर और मुल्क के लोग भी, जब उन्होंने उनको छोड़ दिया और उनके बुतों को भी। अब ये नहीं था कि वो अपने साथ अपने बैग और अटैची में बुतों को रख कर ले आए थे, घर वालों को तो छोड़ा था, बुत रख कर ले आए, जैसे बनी इसराइल ने हिजरत की थी ना, रास्ते में कहने लगे कि मूसा हमें भी इनकी तरह जो है वो एक बछड़ा जो है वो बना दे, हमें भी कोई माबूद बना दे। जैसे वो रास्ते में लोगों को गाय की बछड़े की इबादत करते हुए देखा तो कहा कि हमारा भी कोई खुदा बना दे। तो ऐसा नहीं था कि दिलों में बछड़े की इबादत और मोहब्बत लिए हुए वो चले आए, नहीं, उनको भी सबको छोड़ दिया। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वहबना लहू इसहाक व याकूब। वहबना, हाबा, हा हबा करना, तोहफा देना, बख्श देना, अता कर देना। फिर हमने भी बख्श दिया लहू उसको, किसको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कुर्बानी करने वाले को, अलहदा होने वाले को। और वो कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वहबना लहू, और हमने भी जो है वो अता कर दी, बख्श दी, दे दी उसको। इब्राहिम जैसा जब बाप था ना, इब्राहिम जैसा बाप तो बनिए, इब्राहिम जैसा किरदार तो पैदा कीजिए अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा दाई तो बनिए। अल्लाह ताला कहते हैं फिर हमने उसको दे दी, क्या दिया, इसहाक जैसा बेटा दिया, और बेटा ही काफी था इसहाक जैसा। वह याकूब, और पोता दिया याकूब अलैहिस्सलाम जैसा। मुराद क्या है? नस्लों में पैगंबरी लिख दी। ये है हिजरत की बरकतें। ये है हिजरत की बरकतें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और हर एक को नबुव्वत से सरफराज किया। अब आप देखें इससे क्या बात पता चलती है कि हिजरत की ये बरकतें हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत की समरात और बरकात ये थी कि जब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा तो अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि जो मेरे लिए अपने घर दुनिया बर्बाद करता है, अपने घर को बर्बाद करता है, फिर मैं उसको किस शान से आबाद करता हूँ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिजरत के बाद ना सिर्फ औलाद दी, ऐसी औलाद दी जो नबुवत और रिसालत पर जिसको जो है वो कायम किया और रुश्द और हदायत का उनको गुलदस्ता बना दिया कि उनके खानदान से रुश्द और हदायत का फैज हजारों साल से जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। आपको पता ही है कि रुश्द और हदायत के दो अजीम सिलसिले उनसे शुरू हुए, एक इसहाक अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है ना, और दूसरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिससे जो है फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता जो है वो मिलता है। तो अभी यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है ये इसहाक अलैहिस्सलाम का हो रहा है और अभी आप आगे जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का अलग से फिर पढ़ेंगी इसी सबक में, आज के सबक में। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वकुल्लन जालना नबिया, और हर एक को हमने नबी बनाया। अब इसके वो तीनों मानी आप कर सकती हैं कि हर एक को हमने जो है वो क्या बनाया, अल्लाह की तरफ रास्ता बताने वाला बनाया, हर एक को ऊंचा मकाम दिया, हर एक को अल्लाह की खबरें बताने वाला बनाया, तो हर एक को नबी बनाया। तो यहाँ पे कुल्लन से मुराद इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम हैं। फिर फरमाया वहबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने उनको अता की, क्या अता किया, हमने उनको अपनी रहमत से नवाजा। अब आप देखिए कि पहले रहमत से बढ़कर रहमत क्या हो सकती है, इस रहमत से बढ़कर कि नबूवत जैसी चीज दे दी, लेकिन फिर कहा, दोबारा जिक्र किया वहबना लहुम मिन रहमतिना। तो रहमत से मुराद मुफस्सरीन ये कहते हैं कि नबूवत की बरकात, यानी नंबर वन तो नबूवत ही मुराद है, अल्लाह का फजल, अल्लाह की अनायतें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत थी, और दूसरी बात यह कि उनको औलाद से नवाजा। जब वो हिजरत करके निकले हैं तो अल्लाह ने उनको औलाद जो है उससे भी नवाजा। फिर आप देखिए कि उनको माल से भी नवाजा, और तमाम वो बरकतें आप याद करें जो आप सूरत इब्राहिम सूरत अलबकरा में आप पढ़ चुकी हैं कि उन्होंने अपनी औलाद के लिए जो समरात मांगे थे, जब उनको जाके जब खाना काबा बनाया था तो अल्लाह ताला से बहुत से समरात जो थे वो मांगे थे, तो इससे मुराद माल भी है, औलाद भी है, फल भी है, और उसके साथ ही नबूवत का जो तोहफा है वो भी इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो अता किया। वजअलना लहुम लिसाना सिदकन अलिया, और इनको सच्ची नाम भरी अता की, इससे मुराद क्या है, आप देखिए कि और बनाया इनको, अब इन सब को, इन सब को लिसाना से मुराद क्या है, जिक्र, शोहरत, यानी लिसान जबान को कहते हैं ना, तो इनको लिसाना सिदकन दे दी कि लोगों की जबानों पर इनका जिक्र सिद्क के साथ था, सिद्कन अलिया, और अलिया के मानी क्या है, अलिया के मानी है कायदारी, इस्तेहकाम, बुलंदी। तो अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनका तारुफ करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इन सब का जिक्र जमील जो था आप छोड़ा। और आप देख लीजिए कि अगर आप गौर करें तो आपकी समझ में ये बात आएगी कि حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورت شعراء میں دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان میں میرا ذکر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، لسان صدق یعنی ثنائے جمیل ہو، ذکر ہو تو اچھی یاد لوگ کریں. اور آپ دیکھیں کہ آج تک کتنی دنیا گزر چکی ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد، آج بھی لوگ ان کا ذکر محبت اور پیار سے کرتے ہیں، کیسے ان کا نام رکھتے ہیں، اور براہم اور براہیم یہ لوگ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی ابراہیم رکھتے ہیں نا. پھر درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے ہر نماز میں، جب آپ بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس میں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو پیغمبروں کے نام ہیں، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، مختلف پیغمبروں کے نام، یہ بھی ان کے ذکر میں آتا ہے کہ ان کے نام ہم اپنی اولاد کے نام جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو دراصل جو ہے یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے لسانہ صدقن علیہ، بلندی کا ذکر جو ہے وہ چھوڑ دینا. آپ سورت یونس میں پڑھ چکی ہیں قدم صدقن عند ربہم، تو قدم بھی اچھے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، اچھی ناموری مل جائے. تو بعض پیغمبروں کو حکومت بھی ملی نا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہے نا. تو اسی طرح یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہاں پر کیا ہے، وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی ناموری جو ہے وہ عطا کی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی خاطر جب گھر چھوڑا جائے، جب خاندان کو چھوڑا جائے، جب ملک چھوڑا جائے، جب اپنا کاروبار تجارت بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دی جائے، اگر وہ حرام ہے، اگر وہ غلط ہے، تو مت سوچیں کہ آپ برباد ہو جائیں گے، آپ لٹ جائیں گے، آپ کا دنیا میں کوئی نام نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے کہ وہ عزت پائیں گے جس کا کافر تصور بھی نہیں کر سکتے. اہل مکہ بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنی عزت ملے گی. آپ دیکھیں ہجرت کی مسلمانوں نے، اور کتنا ملا، اللہ نے کتنا ان کو دیا، خالی ہاتھ مدینہ سے چھوڑ کر، مدینہ کو چھوڑ کر نکلے تھے نا، کیسی کیسی کہانیاں ہیں نا. تو اللہ کی خاطر خالی ہاتھ نکلیں تو صحیح، اللہ کی خاطر اللہ کے ہو کر تو دیکھیں، اللہ ساری دنیا آپ کی نہ کر دے، میری نہ کر دے تو کہنا، اللہ کا ہو کر تو دیکھ، ہے نا. تو اصل بات یہ ہے، افسوس کہ ہم اللہ کے اب تک ہوئے ہی نہیں.